6 अगस्त दिन सोमवार दिन भर मैं हूँ रेहान फतल। छत्तीसगढ़ में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 15 नक्सलियों को मारने का किया दावा।
मुठभेड़ के बाद जब मौके पर सर्च किया गया वहाँ पे 15 नक्सलियों के सब और ये सभी 15 मेल हैं और एक फीमेल कैडर जिसको पैर में गोली लगी है जो घायल है।
बताएंगे किस तरह चीन में जीवन साथी ढूंढना होता जा रहा है मुश्किल।
इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल चाइनीज वे ऑफ मैच मेकिंग।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा में पुलिस ने 15 माओवादियों को मारने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ वाली जगह से उसे 16 अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। उसने 2 माओवादियों को हिरासत में भी लिया है। लोम्बोक द्वीप पर भूकंप के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस द्वीप से शवों को तुरंत निकालने के आदेश दिए हैं। भूकंप में 90 से अधिक लोग मारे गए थे। विडोडो ने कहा है कि आपातकालीन सहायता कर्मियों के साथ साथ किसी को भी वहां नहीं छोड़ा जाना चाहिए और द्वीप के तबाह हो चुके भागों से लोगों को निकालने के लिए अधिक उड़ानों का बंदोबस्त किया गया है। लोम्बोक और गिली द्वीपों से 10,000 लोगों को निकाला जा चुका है। रविवार को आए 6.9 तीव्रता के भूकंप के बाद सड़कें और पुल तबाह हो चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि इस कारण कई इलाकों तक पहुंचना कठिन है। सॉफ्ट ड्रिंक निर्माता कंपनी पेप्सिको ने कहा है कि 12 सालों बाद उसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा नुई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इंदिरा पेप्सिको के साथ 24 सालों से जुड़ी हुई हैं। सीईओ बनने के बाद 62 वर्षीय भारतीय अमरीकी इंदिरा हमेशा विश्व के सबसे प्रभावित व्यावसायिक नेताओं की सूची में रही हैं। पेप्सिको ने कहा है कि रमोन लगुआटा अक्टूबर से सीईओ का पदभार संभालेंगे। परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाने को लेकर यूरोपीय शक्तियों ने कहा है कि वे इस कदम पर खेद व्यक्त करते हैं। व्हाइट हाउस प्रतिबंधों की पूरी जानकारी जल्द ही घोषित करेगा। संयुक्त बयान में यूरोपियन यूनियन और जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने वादा किया है कि वे ईरान के साथ वैध व्यवसाय करने वाली यूरोपीय कंपनियों की रक्षा करेंगे। जर्मनी ने दोहराया है कि वह ऐसी कंपनियों को निर्यात और निवेश गारंटी का प्रस्ताव जारी रखेगी। यूरोपियन आयोग की प्रवक्ता मीना एंड्रीवा ने कहा,
The blocking statute, once it enters into force, will allow EU operators to recover damages arising.
प्रतिबंध जब अस्तित्व में आएंगे तब अमरीकी प्रतिबंध से हुए नुकसान को EU ऑपरेटर वसूल कर पाएंगे और उन पर आधारित किसी भी विदेशी अदालत के फैसले के यूरोपियन यूनियन में प्रभाव को खत्म कर देगा। ये थे यूरोपियन आयोग की प्रवक्ता मीना एंड्रीवा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी में महिला अधिकारों की पैरवी करने वाली कार्यकर्ता को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने सऊदी अरब में उनके साथी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने पर बोलने के लिए कनाडा आमंत्रित किया है। मनल अल शरीफ ने कनाडा को धन्यवाद दिया है। सऊदी प्रशासन ने इसके जवाब में कहा है कि वे कनाडा के साथ सभी व्यापार और निवेश बंद करने जा रहा है और देश के राजदूत को निकाल रहा है। ओटावा में रियाद के राजदूत को भी वापस बुला लिया गया है। कनाडा ने जोर देते हुए कहा है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की हिबा जायदीन ने सऊदी प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की है।
This latest rash move on the part of the Saudi authorities shows just how determined the Saudi government is to suffocate.
नया कदम सऊदी प्रशासन की ओर से उठाया गया जल्दबाजी वाला कदम है जो दिखाता है कि सऊदी सरकार नागरिक समाज का गला घोंट रही है और किसी भी तरह की जवाबदेही को लेकर अनिच्छा दिखा रही है। मोहम्मद बिन सलमान के पास दोनों दुनिया नहीं हो सकती हैं। उन्होंने 2 साल और अरबों डॉलर खर्च कर दुनिया को खुद को एक सुधारक और देश को आधुनिकता की राह पर दिखाया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ये थे ह्यूमन राइट्स वॉच की हिबा जायदीन के शब्द। इस्लामिक स्टेट लड़ाकों के कब्जे वाले दक्षिण पश्चिम इलाके में सीरिया के सरकार समर्थित बल लगातार हमले कर रहे हैं। सुवेदा प्रांत के उत्तरी क्षेत्र में रविवार से हमले शुरू किए गए हैं। 2 सप्ताह पहले आईएस लड़ाकों द्वारा छेड़े गए हिंसक अभियान में 150 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके अलावा उन्होंने 30 लोगों को बंधक भी बनाया था। कहा जा रहा है कि बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत रोक दी गई है। आईएस ने घोषणा की थी कि उसने एक बंधक को मार दिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 15 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ स्थल से 16 अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 2 माओवादियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
इस साल बरसात के दिनों में भी सुरक्षा बलों ने बस्तर में माओवादियों के खिलाफ अपना सघन ऑपरेशन जारी रखा है और पुलिस का दावा है कि इस ऑपरेशन में उन्हें सफलता भी मिल रही है। पुलिस के अनुसार सोमवार को सुरक्षा बलों की 2 टुकड़ियां सुकमा जिले के गोल्लापल्ली और कोंटा इलाके में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर निकली थीं, जहां संदिग्ध माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। बस्तर के आईजी पुलिस विवेकानंद सिन्हा के अनुसार,
ये मुठभेड़ करीबन 1.5 से 2 घंटा तक चली और मुठभेड़ के बाद जब मौके पर सर्च किया गया, वहां पे 15 नक्सलियों के शव और ये सभी 15 मेल है और एक फीमेल कैडर जिसको पैर में गोली लगी है जो घायल है।
पखवाड़े पर पहले 19 जुलाई को तिमेनार में भी मुठभेड़ में 8 माओवादी मारे गए थे। इसके अलावा 12 जुलाई को चिंतागुफा इलाके में भी 4 माओवादी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। लेकिन राज्य में नक्सल ऑपरेशन के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सोमवार को हुई मुठभेड़ को एक बड़ी सफलता मानकर चल रहे हैं। उनका दावा है कि यह मुठभेड़ ऐसे इलाके में हुआ जहां अब तक माओवादियों का कब्जा था।
इस कैंप में 20 से 25 लोगों के होने की खबर थी। कुछ लोग उसमें भाग गए हैं और 14 मारे गए हैं। एक लड़की को जिंदा पकड़ा गया है। शायद उस इलाके में पहले जो टेरेन है वहाँ पे जो फोर्सेस थी वहाँ कभी गई नहीं है, तो इसलिए इसका फायदा सिक्योरिटी फोर्सेस को मिला।
पुलिस महानिदेशक ने दावा किया है कि सुकमा में ही एक और ऑपरेशन जारी है और उन्होंने उम्मीद जताई कि देर रात या मंगलवार की सुबह इस ऑपरेशन में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिल सकती है। फिलहाल सुकमा में दूसरे इलाकों से भी अतिरिक्त बल भेजा गया है और माओवादियों के खिलाफ रात को भी अभियान चलाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
मुजफ्फरपुर के एक बालिका गृह में बच्चियों से हुए बलात्कार मामले की CBI जांच अब पटना हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। इसका आदेश आज पटना हाईकोर्ट ने दिया। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ये घोषणा की कि भविष्य में बच्चों के ऐसे गृहों का संचालन खुद सरकार करेगी। मुजफ्फरपुर मामले की सुनवाई करते हुए आज अदालत ने और क्या आदेश दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने क्या क्या कहा, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट में।
जून के शुरुआत में मुजफ्फरपुर बालिका गृह और सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऐसे दूसरे केंद्रों में यौन शोषण और अन्य गड़बड़ियां सामने आई थी। इसके बाद पटना के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार ने मामले की हाईकोर्ट की निगरानी में CBI जांच के लिए जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका और ऐसे ही एक अन्य याचिका पर अदालत कोई फैसला सुनाती, इससे पहले ही बीते महीने 26 जुलाई को बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच CBI से कराने की सिफारिश कर दी। आज इस मामले की पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ में फिर सुनवाई हुई। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि CBI जांच अब पटना हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। अदालत ने आज के अपने आदेश में और क्या क्या कहा, इस संबंध में याचिकाकर्ता संतोष बताते हैं।
तो इसके लिए स्पेशल बेंच बनेगा और स्पेशल बेंच में और स्पीडी ट्रायल के साथ इससे रिलेटेड जितने भी केसेस आएंगे, माने या तो कोई बेल का होगा या कोई क्वेश्चन को लेकर के होगा, तो वही बेंच सुनेगा। तीसरी बात, कोर्ट ने कहा जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है सरकार को। चौथी बात, हमने रिहैबिलिटेशन को लेकर के मुद्दा उठाया, जो उत्पीड़ित बच्चे हैं जिनके साथ एक घटना दुष्कर्म हुआ है उन बच्चों को रिहैबिलिटेशन को लेकर के, तो हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को इंस्ट्रक्ट किया है जिनको रिहैबिलिटेशन और इनकी सिक्योरिटी को एश्योर किया जाए।
दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस मामले पर विपक्ष के हमले और आरोपों का पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी घोषणा की कि भविष्य में बच्चों के ऐसे गृहों का संचालन सरकार खुद करेगी।
ये जो आप NGO को एंगेज करते हैं ये ठीक नहीं। अब जैसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में जो बच्चे जिनका विधिक कारण से वो रहते हैं तो उनके लिए तो सब सरकारी तंत्र है, सरकारी माध्यम से ही किया जाता है, लेकिन बाकी जो दूसरे तो उनको भी इसी प्रकार से सरकार द्वारा निर्मित स्थानों पर ही रखा जाए और सरकार की पूरी एजेंसी और उसके लिए जो भी मैन पावर की जरूरत है उसका असेसमेंट करी।
यह मामला सामने आने के बाद मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर के साथ नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील कुमार मोदी, शहनवाज हुसैन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस पर नीतीश कुमार ने कहा,
उसकी तस्वीर लोग सुनते हैं, कहाँ कहाँ दिखाते हैं, तो आप सब पत्रकार बैठे हैं, किसी पत्रकार को कोई कह सकता है कि तुम यहाँ खड़ा मत हो? और सुना कि हमारे और मोदी जी के साथ दिखा दिया, फिर लालू जी के साथ दिखाया, अरे भाई ये कोई विषय है क्या? और कौन जानता है? और मैं पूछना चाहता हूँ, जितने लोग आज बोल रहे हैं, अगर उनको जानकारी थी तो इस बात को उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा, चाहे वो पत्रकार हो या किसी पार्टी के नेता।
नीतीश ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विपक्ष के साझे प्रदर्शन को लेकर भी तंज कसा। नीतीश ने कहा कि उन्हें धरने पर तो हंसी आती है। उन्होंने मंत्री मंजू वर्मा के इस्तीफे की मांग पर कहा कि अगर मंत्री के स्तर पर कोई फैसला हुआ है तो उनको भी हटाया जाएगा। वहीं मंजू वर्मा के इस्तीफे के सवाल पर भाजपा में मतभेद सामने आए हैं। भाजपा सांसद गोपाल नारायण सिंह और डॉक्टर सीपी ठाकुर ने जहां उनके इस्तीफे की मांग की है, वहीं भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंजू शर्मा का बचाव किया है। मनीष चंद, दिल्ली, BBC, पटना।
आर्टिकल 35 की कानूनी मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के खिलाफ आज दूसरे दिन भी कश्मीर बंद रहा। कश्मीर के अलावा जम्मू क्षेत्र के कई इलाकों में भी दुकानें बंद रहीं। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
ये आवाज़ें दर्जनों उन कश्मीरी व्यापारियों की हैं जो आज श्रीनगर के लाल चौक से यूएनओ ऑफिस तक आर्टिकल 35 की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती देने के खिलाफ मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इस मार्च को नाकाम बना दिया। कश्मीरी इकोनॉमिक अलायंस के अध्यक्ष फारूक अहमद का कहना था कि कश्मीर के लोग किसी भी हाल में आर्टिकल 35 के खिलाफ छेड़छाड़ होने नहीं देंगे,
चाहे वो दफा 35A हो, चाहे वो दफा 370 हो, जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम इस 35A के साथ छेड़छाड़ करने नहीं देंगे। खून सड़कों पे गिरेगा, हम वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं।
वहीं कश्मीर के आम लोगों में भी आर्टिकल 35A के खिलाफ संभावित छेड़छाड़ को लेकर काफी रोष है। आम शहरी निसार अहमद और तजमुल इस्लाम कहते हैं,
सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग उसको डेफर किया गया है 27 अगस्त तक। अब देखेंगे आगे क्या होगा इसमें, 27 अगस्त को फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट, तो हम देखेंगे उस बार क्या होगा, लेकिन हम चाहते हैं ये डेफर हो जाए, ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का, जो इसको डिफरेंट बनाती है बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया से। रियासत जम्मू कश्मीर के सारे लोग, सारे फिरके, सारे ज़ात, सारे मजहब मिलत इस मुद्दे पर इकसा हैं और हम इंशाल्लाह इसका डट के मुकाबला करेंगे।
अलगाववादियों की बंद कॉल का समर्थन कश्मीर की व्यापार संगठनों ने भी किया था। कश्मीर बंद के चलते कश्मीर में सोमवार को भी गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही और साथ ही कश्मीर घाटी में दुकानें और दूसरे कारोबारी इदारे भी बंद रहे। कश्मीर की कई हसास जगहों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। उधर जम्मू क्षेत्र में भी कई इलाकों में कारोबारी इदारे बंद रहने की खबरें हैं। जम्मू क्षेत्र के पुंछ राजौरी में भी आर्टिकल 35 की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती देने के खिलाफ प्रदर्शन हुए और दुकानें बंद रहीं। पुंछ के एक आम नागरिक साबिर हुसैन ने फोन पर BBC को बताया,
जम्मू और कश्मीर में, कश्मीर की तरह यहाँ पर भी हमारा जो सरहदी जिला पुंछ है, यहाँ पर भी पूरा अमन एहतियात जो था वो 35A को लेकर हुआ, जिसमें स्कूल कॉलेजेस वगैरह तमाम जो थे वो बंद रहे और दुकानें वगैरह भी बंद रही।
बीते कई दिनों से कश्मीर घाटी में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अलगाववादियों के अलावा राज्य में आम दायरे के राजनीतिक दल PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी श्रीनगर में आर्टिकल 35A की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती देने के खिलाफ बीती शनिवार को श्रीनगर में प्रदर्शन मार्च किया था। वर्ष 2014 में दिल्ली की एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर जम्मू कश्मीर राज्य से आर्टिकल 35A की मान्यता की कानूनी हैसियत को चुनौती दी थी। दरअसल आर्टिकल 35A से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष दर्जा हासिल है। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले लोगों को जम्मू कश्मीर राज्य में जमीन या इमूवेबल जायदाद खरीदने से रोक देता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 27 अगस्त तक इस मामले की सुनवाई टाली है। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
खबर सच है अगर BBC पर है।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। महाराष्ट्र में मराठाओं का आंदोलन दिनों दिन उग्र होता जा रहा है। उनकी मुख्य मांग है शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण। इसी मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रविवार को कुछ बड़े ऐलान किए। इसमें बड़ी बात थी इसी वर्ष नवंबर तक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का वादा, लेकिन मराठा संगठनों ने आंदोलन वापस लेने पर एक नई शर्त रख दी है। क्या है वो शर्त और क्या महाराष्ट्र में 9 अगस्त से मराठा आंदोलन फिर तेज हो पाएगा? संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट।
सरकार करता, आमच्या कोणाही करता, मुख्यमंत्री म्हणून वैयक्तिक माझ्या करता, हा कुठल्याही प्रतिष्ठेचा प्रश्न नाही आहे। जोपर्यंत समाज शांत होत नाही, जोपर्यंत महाराष्ट्र शांत होत नाही।
ये थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि मराठा समाज को आरक्षण देने की कानूनी प्रक्रिया इसी वर्ष नवंबर अंत तक पूरी कर ली जाएगी। तब तक महाराष्ट्र सरकार का मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव भी स्थगित करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है, ताकि मराठा समाज के बेरोजगार युवक भी इसका लाभ ले सकें। लेकिन अब भी आंदोलन वापसी के आसार नजर नहीं आ रहे। आंदोलकों ने अब नई शर्त आगे कर दी है। बीबीसी ने बात की सकल मराठा समाज के रविंद्र काले पाटिल से।
हमारा यही कहना है कि जो मुख्यमंत्री ने कल घोषणाएं की है वो खाली लिखित में हमें किया जाए। सीएमओ कार्यालय से लिखित में आना चाहिए और वो लिखित आने के बाद हम हमारे लोगों के सामने रखेंगे और सारे लोग मिलकर निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवंबर से पहले निपटाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि मेगा भर्ती अभी फिलहाल रुकाई गई है, जो भर्ती वो करने वाले थे कोई जाहिरात वगैरह निकली नहीं अब तक, ठीक है वो भी लिखित में दीजिए। और तीसरी बात, जो पूरे महाराष्ट्र में बच्चों के ऊपर जो केसेस हुए वो केसेस तुरंत वापस लिया जाए। गृह मंत्री पद भी मुख्यमंत्री के पास ही है।
मतलब ये कि मराठा समाज के संगठन अब भी दबाव बनाए रखना चाहते हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री के बयान के बाद राज्य में शांति की जो उम्मीद की जा रही थी उसे कुछ झटका जरूर लगा है। रविवार के ही दिन धुले में सरकारी बैठक के लिए आई युवा सांसद डॉक्टर हिना गावित के वाहन पर मराठा आंदोलकों में से कुछ लोगों ने जोरदार हमला कर दिया। डॉक्टर गावित तो बच गईं, लेकिन उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। उधर किसान नेता और राज्य में किसानों के लिए बने सरकारी मिशन के मुखिया किशोर तिवारी मानते हैं कि इस वक्त राज्य में शांति बहाली किसानों के हित में बेहद जरूरी है।
ये आंदोलन विदर्भ से तो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि विदर्भ में मराठा ज्यादातर कुंडी में आ चुके हैं, तो उनको पहले से आरक्षण मिला हुआ है और वो वंचित भी है। लेकिन जिन्होंने सत्ता आज तक रखी वो लोग अभी आरक्षण मांग रहे हैं, तो बहुत ही विचित्र बात है। और मुख्यमंत्री ने जितना प्रोग्रेसिवली हैंडल किया है तो उन्होंने
इधर 9 अगस्त से प्रस्तावित आंदोलन को लेकर मराठा संगठनों का जिला स्तरीय बैठकों का दौर अब भी जारी है। और उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की मुख्यमंत्री और राज्य के भाजपा सांसदों के साथ बैठक की खबर दिल्ली से आ रही है। नागपुर से संजय रमाकांत तिवारी, बीबीसी।
आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का।
नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे।
जी सूर्यांशी, तो शुरू करें चिट्ठियों का सिलसिला।
सबसे पहले राजेश जी, हम शुरू करेंगे पत्रों से, जिसमें से पहला जो पत्र है वो है रजत कुमार जी का, जिन्होंने लिखा है भूड़े बरेली से, यूपी से यानी कि लिखते हैं ये। और इनको ब्राज़ील के जंगल में रहने वाली जो आदिवासी लोग हैं उन पर जो जानकारी थी वो बेहद रोचक लगी और उनको लगा कि ऐसे कार्यक्रम और रेडियो में प्रसारित होने चाहिए।
आपका बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया और आपने इसके लिए चिट्ठी लिखी। आपकी ये टिप्पणी, आपकी ये प्रशंसा हम कार्यक्रम तैयार करने वाले व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचा देंगे।
राजेश जी, इन्होंने आलोचना की है मानवता पे या फिर हम पर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अलीगढ़ से लिखते हैं, इनका नाम है अमरा। इन्होंने लिखा है कि ब्राज़ील के अमेज़न घाटी में जो 22 सालों से एक अकेले कबायली की अपने अस्तित्व की लड़ाई पर बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट उन्हें अच्छी तो लगी, पर अफसोस हुआ कि किस तरह आज का सभ्य समाज ऐसे जंगली कबीलियों को एक तमाशाई की तरह किनारे खड़े होकर तमाशा देखता है, जैसे वो इंसान नहीं कोई शोध या खोजबीन करने वाली कोई चीज़ हूँ।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक बहुत अजीब सी विडम्बना है और उस व्यक्ति ने हमेशा अपना जीवन प्रकृति के साथ बिताया और उसकी
कहानी बहुत दिलचस्प थी और उसको अगर हम गौर से देखें तो जैसा आपको महसूस हुआ, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें सोचने पर वो रिपोर्ट विवश करती है।
अब हम ईमेल्स पर आते हैं राजेश जी, और सबसे पहला ईमेल है सादिक आजमी जी का जो सऊदी अरब से लिखते हैं, और इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गर्मा गर्म विषय जो NRC के परिपेक्ष में है, युगांडा में एशिया लोगों पर गिरी गाज की समीक्षात्मक रिपोर्ट्स ने विवेचना को निस्संदेह और लोकप्रियता प्रदान की है, और रेहान फजल का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है।
बहुत शुक्रिया आपका रेहान, तक हम ये बात ज़रूर पहुंचा देंगे। और अब अगला ईमेल कहां से आया है?
इन्होंने अपनी जगह नहीं लिखी है, ये गणेश प्रसाद हुजदार हैं जिन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण में भारत के प्रधानमंत्री मोदी तथा जाने माने बॉलीवुड के सितारे और प्रख्यात खिलाड़ी सुनील गावस्कर के निमंत्रण के बारे में जो वसतुल्ला खान की डायरी थी वो उन्हें बेहद पसंद आई है।
बहुत शुक्रिया आपका, वसतुल्ला खान की डायरी काफ़ी लोकप्रिय है भारत में, खासतौर पर पाकिस्तान के मुद्दों पर जब वो लिखते हैं तो लोगों को काफ़ी मज़ा आता है। और वसत साहब वैसे काफ़ी गंभीर पत्रकार हैं, लेकिन साथ ही उनका जो व्यंग की जो उनकी शैली है वो लोगों को ख़ास तौर पर पसंद आती है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ।
ये हमारे पहले, जिसे आप कह सकते हैं कि जिन्होंने पहली बार ईमेल लिखा है, इनका नाम है आशुतोष कश्यप, ये मुजफ्फरपुर बिहार से लिखते हैं, और ये कह रहे हैं कि वो 3 साल से रेगुलरली सुन रहे हैं BBC न्यूज़, लगातार सुन रहे हैं, और उनको कुछ प्रोग्राम बेहद पसंद है जैसे कि पाकिस्तान डायरी, खेल और खिलाड़ी, दुनिया जहां और विवेचना।
बहुत शुक्रिया आशुतोष जी कि आपने हमें ईमेल लिखा, आप हमसे जुड़े, हम आप जैसे ही जो नए श्रोता हैं उनकी भी राय जानना चाहते हैं, आपको कार्यक्रम पसंद आते हैं ये आपने बताया, अगर कोई बात पसंद ना आए तो वो भी बताएं, आपका स्वागत है।
आपने जैसे कि पसंद ना आए तो इस पर एक ईमेल आ गया है जिनको पसंद नहीं आई एक बात, और एक रिपोर्ट पर उन्होंने कड़ी आलोचना जताई है, जो रिपोर्ट थी क्या प्राचीन भारत का हिंदू वाकई सहिष्णु था।
ये रिपोर्ट नहीं, एक इंटरव्यू है और जाने माने इतिहासकार DN झा का इंटरव्यू है, और इस पर काफ़ी लोगों ने शिकायतें की हैं, काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ भी की है। ये एक ख़ास तरह का नज़रिया है जिससे आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आप असहमत हों, लेकिन चीज़ों को देखने का एक नज़रिया ये भी है जो प्रोफेसर DN झा का है, वो सब कुछ तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ आपके सामने रख रहे हैं। इसके विपरीत भी तर्क हो सकते हैं, इसके विपरीत भी तथ्य हो सकते हैं, इससे सहमत होना ना होना आपकी इच्छा है, लेकिन असली चीज़ ये है कि आपको ख़ास तौर पर ऐसी बातें पढ़नी और सुननी चाहिए जिनसे आप सहमत ना हो, आपका बौद्धिक विकास तभी होता है, ताकि आप पढ़ के समझ के और उसके बाद फिर ये कह सके कि नहीं ये गलत है, तो वो उस पूरी प्रक्रिया में आपका एक तरह का बौद्धिक विकास होता है। तो जो प्रोफेसर DN झा कह रहे हैं वो एक दृष्टिकोण है, ठीक उल्टा दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है, दोनों को देखना समझना चाहिए, उसमें उसको लेकर इतना भावुक होने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा मुझे लगता है।
मेरे ख्याल से विशाल शर्मा जी आपको अपना जवाब जो है वो मिल गया होगा। अब हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक और प्रशंसा है रेहान फजल जी की ही, गौतम दत्ता और GR शर्मा ये दोनों ही रेहान फजल की तारीफ करते हैं, उन्होंने लिखा है कि युगांडा के पूर्व राष्ट्रपति ED अमिन पर की गई विवेचना सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी राक्षस लोक की कथा सुन रहे हों।
आपकी तारीफ हम रेहान फजल तक पहुँचा देंगे, बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह हमें अपने पत्र भेजते रहिए, अपनी राय बताते रहिए, जब आपको लगे कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं बेशक तारीफ करिए, जब आपको लगे कि हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं बेशक आलोचना करिए, बस हमसे जुड़े रहिए। और ऐसा करने के लिए आपको चाहिए हमारा पता ये है कि अगर आप डाक से चिट्ठी भेजना चाहें तो BBC हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर आप ईमेल भेजना चाहें तो पता वही है hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
ये थे आपके पत्रों के उत्तर। जैसे जैसे चीन में लड़कियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं, उन्हें अपने लिए पसंद का जीवन साथी ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। चीनी मीडिया में प्रकाशित एक आंकड़े के मुताबिक 2020 तक यहां करीब 2.5 करोड़ कुंवारे मर्द होंगे। बच्चों की शादी में देरी से चिंतित कई माँ बाप हर सप्ताहांत शंघाई के एक पार्क में इकट्ठा होते हैं, जहां पहुंचकर BBC संवाददाता विनीत खरे ने शादी को लेकर चिंतित कुछ लोगों से बात की।
केंद्रीय शंघाई में एक पार्क है जहां साल 2005 से हर हफ्ते शादी का बाजार सजता है। जब हम पार्क पहुंचे तो वहां रुक रुक कर बारिश हो रही थी। छातों के ऊपर पन्नियों से लिपटे कागज रखे थे जो दरअसल शादी के बायोडेटा थे। इसमें दर्ज थे लड़के और लड़कियों की उम्र, तनख्वाह और उनकी राशि। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2020 तक चीन में कुंवारी लड़कियों के मुकाबले 3 करोड़ ज्यादा कुंवारे लड़के होंगे। चीन में महंगाई बढ़ रही है और लड़के और लड़कियों की अपने पार्टनर्स को लेकर उम्मीदें भी। इसलिए या तो वो देर से शादी कर रहे हैं या शादी ही नहीं कर रहे हैं या फिर शादी को लेकर उनकी धारणाएं बदल रही हैं। लेकिन भारत की तरह चीन में भी बच्चे शादी न करें या देरी से करें तो कई माँ बाप रिश्तेदार परेशान हो उठते हैं। पार्क में हमारी मुलाकात ग्रेस से हुई। ग्रेस ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और अपने भांजे झांग शिमिंग के लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन कई परिवारों ने उन्हें मना कर दिया। मोबाइल पर मिंग की फोटो दिखाते हुए उन्होंने कहा,
मेरे भतीजे के पास अच्छी नौकरी है और वो 5,000 युआन महीना कमाता है, लेकिन लड़की के परिवार कहते हैं उन्हें 10,000 युआन महीना कमाने वाला लड़का चाहिए।
चीन में लड़के को शादी से पहले सिर के ऊपर छत का इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन घरों के दाम करोड़ों में है। पार्क में लड़कियों के एक झुंड में से एक ने हंसते हुए मुझे बताया,
चीन की संस्कृति के मुताबिक शादी से पहले लड़कों को ही घर का इंतजाम करना पड़ेगा, हम लड़कियां फर्नीचर खरीद लेती हैं।
उधर ग्रेस का कहना था कि अगर वो भारी कर्ज लेकर अपने भांजे के लिए मकान ले भी लेती हैं तो उसे चुकाने में दशमों लग जाएंगे। ग्रेस को सही मौके और समय का इंतजार है। ग्रेस ने मुझे बताया कि पार्क में जिन लड़कियों के माँ बाप आए हैं उनकी उम्र 35 के आसपास है, उनके पास अच्छी शिक्षा, नौकरियां और तनख्वाहें हैं और मिस्टर राइट चुनने का उनका स्टैंडर्ड ऊंचा है। जब इन लड़कियों की उम्र 40 तक या 40 के पार पहुंच जाएगी तो उन्हें अपनी मांग नीचे लानी पड़ेगी। पार्क में अपनी बेटी की शादी के लिए आई एक महिला ने कहा,
शादी के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां लोग आपस में मिल सकते हैं, अगर बात बन जाती है तो अच्छा है।
चीन में पढ़ी लिखी होने के बावजूद अगर लड़की की शादी ना हो रही हो तो उसे लेफ्ट ओवर या बचा हुआ तक कहा जाता है और उसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। स्थानीय पत्रकार एडरा लियांग ने मुझे बताया,
चीन में शादी करने का ये पारंपरिक तरीका नहीं है। यहाँ आने वाले कई लोग रूढ़िवादी परंपरा से आते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप यहाँ हैं, उनकी उम्र 35, 40 या उससे ज्यादा है। उनके माँ बाप के लिए यहाँ आने के अलावा और कोई चारा नहीं है।
हाल ही में सरकार ने दशकों पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी, यानी अब आप एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं और माना जा रहा है कि इससे शादी की समस्या में सुधार होगा। विनीत खरे, बीबीसी शंघाई, चीन।
और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 9 अगस्त से लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा। पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 31 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले टेस्ट में कप्तान विराट कोहली ने दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन जेम्स एंडरसन की गेंद ने उन्हें काफी परेशान किया। अब बात अंडर-20 फुटबॉल की। भारत की अंडर-20 टीम ने 6 बार की विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को कोटिफ कप टूर्नामेंट में हराकर बड़ा उलटफेर किया। भारतीय टीम ने अर्जेंटीना की अंडर-20 टीम को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से मात दी। जाने से पहले बात टेनिस की। विश्व नंबर 3 अलेक्जेंडर ज़ेवरव ने कल वॉशिंगटन ओपन खिताब जीता और एलेक्स द मिनोर को हरा दिया। म्यूनिक और मैड्रिड में जीत के बाद इस साल US ओपन के लिए तीसरे ATP खिताब का दावा करने के लिए ज़ेवरव ने 19 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई को 6-2, 6-4 से हराया। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा में पुलिस ने 15 माओवादियों को मारने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ वाली जगह से उसे 16 अत्याधुनिक हथियार मिले हैं और उसने 2 माओवादियों को हिरासत में भी लिया है। लोम्बोक द्वीप पर भूकंप के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस द्वीप से शवों को तुरंत निकालने के आदेश दिए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुँचाने में मदद की राजेश चौहान ने, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।